देवियों सज्जनों, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे संस्कृति के कल्चर के बारे में, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो एक अलग कल्चर है और जिस देश से हम आते हैं वो एक अलग कल्चर है। कभी कभी दोनों में इतना फर्क है, इसीलिए इसको हम ईस्ट और वेस्ट कहते हैं। जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, इसका अर्थ ये मत लीजिए कि वेस्ट मतलब यूरोपियन कल्चर, ईस्ट मतलब इंडियन कल्चर। वेस्ट में, यूरोप में जो कल्चर पनपा वो आज इंडिया में भी काफी हद तक लोग फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर का अर्थ ये नहीं है कि जो अमेरिका के लोग फॉलो करते हैं या यूरोपियन के लोग फॉलो करते हैं। वो कल्चर जिस जहां वेस्ट में पनपा, पर आज ऑलमोस्ट इंडियन सिटीज में, छोटे छोटे गांव में भी ये कल्चर दिखता है। ईस्टर्न कल्चर का अर्थ नहीं कि जो इंडिया के लोग फॉलो करते हैं, एशिया के लोग, जो वहां के कंसेप्ट है, पर आज अमेरिका में भी आपको बहुत सारे, यूरोप में भी लाखों करोड़ों लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने वाला तो कहीं भी मिल सकता है, पर नाम इसीलिए पड़ा है कि वो बेसिकली वहां से ओरिजिनेटेड है। इसीलिए अगर आपको किसी इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाए और आपको लगे कि ये तो इंडिया में है नहीं है, ये यूरोप में ज्यादा दिखता है, वो अलग बात है। किसी वेस्टर्न कल्चर के बारे में आपको बताया जाए और आपको दिखे कि ये तो भारत में ज्यादा दिखता है, इसका अर्थ नहीं कि इंडियन कल्चर है। अब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, वो अलग बात है, पर दो अलग अलग कल्चर के बारे में पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कल्चर का मतलब ये नहीं है कि क्या हमारा ट्रेडिशन है, क्या हिस्ट्री है। कल्चर का मतलब हमारा हाव भाव, व्यवहार, खान पान, रहन सहन। और जो कल्चर हम जिसको कहते हैं वो अच्छे बुरे हर चीजों से मिला हुआ होता है। हमारे फैमिली ट्रेडिशन से लेकर के पढ़ाई लिखाई के तरीके तक बहुत सारे चीजें होते हैं। जब हम दूसरे देश में रहते हैं बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, जैसे पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे, इवन पुलिस को, इवन जस्टिस सिस्टम में भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। हमारे आपके व्यवहार देख करके उनके व्यवहार को हम नहीं समझ पाते, हम हाँ कहना चाहते हैं वो ना समझते हैं, वो ये हाँ कहना चाहते हैं हम ना समझते हैं। इसकी चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे। तो दोनों अच्छे बुरे, अच्छी बुरी बातें कल्चर में होता है। और अच्छे व्यक्ति वो है, जो समझदार व्यक्ति वो है, जो आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र का अर्थ लेते हैं, ईश्वानी देव सवितर दुरितानी परा सुबह। दुनिया भर में जो जो बुराइयां है, जो मेरे अंदर बुरी बातें हैं, वो आप बाहर ले जाओ और सारे विश्व में, सारे दुनिया भर में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो मेरे पास आ जाए। स्मार्ट आदमी वो है जो किसी भी कल्चर में, किसी भी दुनिया में, किसी भी पार्ट में जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट कर ले, जो बुरी चीजें अपने अंदर हैं कम से कम उसको तो छोड़ दे, दुनिया को छोड़े न चले। हमारी समस्या यही है कि हम दुनिया को जिस लेंस में देखते हैं वो लेंस हमारी अपनी नहीं होती है, वो हमारे कल्चरल लेंस होता है। जिस तरह के फैमिली में हम पले बड़े हैं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। जरूरी नहीं कि वही नजरिया सही हो, इसीलिए दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग नजर से दुनिया को देखते हैं। एक छोटी सी इंसिडेंट आपको देते हैं खाने पीने के मामले में। नॉर्थ इंडिया में जब मैं दिल्ली में था, तो अगर आप बुखार है, आपको कोई बीमार है, तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा रोटी खाना, रोटी सब्जी बंद करो, खिचड़ी खाओ, हल्की चीजें खाओ। वैसे ये एक परसेप्शन बना हुआ है रोटी खाने वाले लोगों में कि चावल खाने से आदमी मोटा होता है, फैट होता है, नींद आती है। मैं जिस राज्य से आता हूं, ओडिशा से, वहां 24 घंटे चावल खाते हैं। वहां बीमार पड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, वो पहले बताएगा कि चावल बंद करना, रोटी खाना, रोटी हल्की खाना। नॉर्थ इंडिया डॉक्टर बोलता है रोटी बंद करना, खिचड़ी खाना। तो बीमारी किसमें होती है, रोटी में होती है कि चावल में होती है? अगर आप पूरे वर्ल्ड को, अर्थ को देखें, वहां करीब करीब आधे से ज्यादा लोग चावल खाते हैं, करीब करीब आधे से थोड़ा कम लोगों को गेहूं खाते हैं। मोस्ट ऑफ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो चावल खाते हैं, और यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इधर उधर के एशिया के बहुत सारे देशों में गेहूं खाते हैं। पर जो जिसको खाता है अगले दूसरे को लगता है कि ये सब बेकार, ये बीमारी का जड़ है। पर चावल खाने वाले भी 100 साल तक जीते, रोटी खाने वाले भी 100 साल तक जीते हैं। चावल खाने वाले भी 10 साल में मरते हैं, रोटी खाने वाले भी 15-10 साल में मरते हैं। ये क्या फर्क है? हमारी लेंस की फर्क है। आप जिस लेंस में दुनिया को देखते हो वही आपको दिखता है, बाकी लोगों के लिए दूसरा नजरिया होती है। इसलिए हमारी जो सोच की तरीका है हर चीज के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में, जब हम जज करते हैं, हमारा जो जजमेंट है वो भी हमारा अपना नहीं होता है, हमारा अपना इंटेलेक्ट नहीं होता है, वो जिस कल्चर के थ्रू हम पले बढ़े हैं। आज आप इंडियन है, गलती से कल अगर आप यूरोप में पैदा होते आप दूसरे तरीके से सोचते, दूसरे तरह के सोच रखते। पिछली बार चर्चा हुई थी, जस्ट थोड़ी सी रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जो भारत की कल्चर हम कहते हैं उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, एक यूनिक ज्योग्राफिक के कारण है, जिसमें डाइवर्स डेमोग्राफिक्स भी हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये 100, 200, 500, 1000, 2000 साल का नहीं, हजार हजार सालों की एक फ्लो ऑफ ट्रेडिशंस या कल्चर से, उसमें बहुत सारे चीजें आए गए, बुरी चीजें जुड़े, अच्छी चीजें जुड़े, बुरी चीजें गए, अच्छी चीजें गए, ये चलता रहता है। आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे पुरानी कल्चर में से एक है, या आप कह सकते हैं सबसे पुरानी कल्चर है, क्योंकि बाकी जो पुरानी कल्चर हम जानते हैं वो आज की तारीख में जिंदा नहीं है। वो इजिप्ट के, मिस्र की हो, ग्रीक की हो, यूनान की हो, वो सब आज म्यूजियम के अलावा बाकी बाहर के बाजार में कम दिखते हैं। पर ऑल्दो इंडियन कल्चर में काफी सारे चेंजेस आए हैं, पर उसकी जो सोर्स है, जो फ्लो है, वो अभी भी आपको भारत भर में घूम आए, आज भी आपको 3000 साल 2000 साल पहले की ट्रेडिशन कल्चर दिख जाएगा, और एक दो जगह नहीं दिखेगा, पूरे के पूरे सोसाइटी में दिखेगा। और ठीक उसका उल्टा वेस्टर्न कल्चर जिसको हम मानते हैं, ऑल्दो वेस्ट का ऐसा नहीं कि उनके कोई पहले कोई कल्चर नहीं रहा, पर उसमें भी बड़े उतार चढ़ाव आए। पर जिसको आज हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, जो यूरोप में पनपा है, वो एक मॉडर्न कल्चर है, जो काफी सारे संघर्षों के, सिविलाइजेशन के संघर्ष के साथ उभरी हुई कल्चर है। बेसिकली आज का जो वेस्टर्न कल्चर है, आप कह सकते हैं 400-500 साल की जो रिवोल्यूशन हुआ है उसकी जो कल्चर है, वो बेसिकली मैटेरियलिस्टिक है और इंडिविजुअलिस्टिक है, और जिसके कारण वहां जिनका जो फोकस पॉइंट होता है वो इंडिपेंडेंसी, हैप्पीनेस, खुशी, लोगों के राइट। इंडियन कल्चर में राइट पर कभी नहीं जोर रहा है, हमेशा रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें क्या करना है। कोई माँ बाप बच्चे को ये नहीं सिखाता है तुम्हारा राइट क्या है, ये सिखाता है कि तुम्हें क्या करना है। तो वेस्टर्न कल्चर में सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है उसके स्कूल में, उसके घर में, कि तुम्हारा राइट क्या है, ये फर्क होता है। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सब वेस्टर्न कल्चर के देन है। दोनों कल्चर के अपने अपने अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। हम अच्छाइयां लें और बुराइयों को छोड़े, दो चार सभी चीजों को पढ़ते नहीं। पिछली बार हमने काफी चर्चाएं की थी, कुछ नई, कुछ खास खास इंपोर्टेंट जो फैक्टर है कल्चर के, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस है। और हम क्यों चर्चा कर रहे, क्योंकि हम दोनों के साथ हमारे पास है, हमारा एक ट्रेड दोनों कल्चर को लेकर हमें जीना पड़ता है। हमारा घर और बाहर, हमारे बच्चे घर में एक कल्चर से कल्चर को देखते हैं, बाहर एक कल्चर को देखते हैं। उनके स्कूल में एक अलग कल्चर है, उनके संडे स्कूल में दूसरी कल्चर है, उनके माँ बाप के पास एक दूसरी कल्चर है, उनके फ्रेंड के माँ बाप के पास एक अलग कल्चर है। हम खुद भी बहुत सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड मैच्योर्ड और बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तब भी हम अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कल्चर क्या है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। कभी कभी घबराहट लगता है कि मैं अपनी कल्चर छोड़ दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझे कहेंगे ट्रेटर है, ये तो धोखेबाज है, वो अपने कल्चर के साथ गद्दारी की, या मैं अगर यहाँ के कल्चर को छोड़ दूं लोगों को लगेगा कि मैं इस कल्चर में रहता हूं, खाता पीता हूं, पर मैं इस कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं करता हूं। ये भाव तभी आता है जब आप कल्चर को समझते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था अपने एग्जाम्पल से, तो अगर आप उसको सही मायने में समझते हैं तो फिर आपको दुनिया के हर अच्छी कल्चर ला सकते हैं, आपका घर एक स्मार्ट घर बन सकता है, हम खुद भी एक स्मार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले होती है एक लेते हैं इंडिपेंडेंसी, जो कि वेस्टर्न कल्चर का बेसिक है, जिसके आधार पर पूरा का पूरा कल्चरल सिस्टम बना हुआ है। वो इंडिपेंडेंसी जब बच्चा यहां बड़ा होता है, खास करके यहां एक अच्छा टर्म है स्वीट 16, ये स्वीटनेस 16 में कहां से आ जाता है, क्योंकि 16 इयर्स ओल्ड होने पर उसको अब बहुत सारी आजादियां मिलती हैं, कार की चाबी से लेकर के और भी बहुत सारी छूट मिलती है। ये नहीं कि भारत में स्वीट 16 नहीं मनाते, मनाते हैं, वेस्ट की नकल करके सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं होता है। बच्चे को कोई राइट नहीं होता है 16 इयर्स होने पर भी, कुछ नहीं होता है, कौन सा स्कूल जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट चुनेगा, क्या पढ़ेगा, कितने बजे पढ़ेगा, क्या कपड़े पहनेगा, कैसे लड़कियों से बात करेगा, लड़कों से बात करेगा, सब माँ बाप डिसाइड करेंगे। बस सेलिब्रेट कर देते हैं, क्योंकि अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग स्वीट स्वीट बोलते रहते हैं, कुछ स्वीट होता होगा तो सेलिब्रेट कर देते हैं, नकल कर देते हैं। पर इनके लिए स्वीट 16 का एक्चुअल एक मतलब है, वो उनकी कल्चर की पार्ट है, उनकी वो इंडिपेंडेंसी की थ्योरी है कि बच्चा आजाद होना चाहिए। बचपन से तो जो आजादी मिलती मिलती है, अब इसके बाद उसके लाइफ में काफी सारे चीजें वो खुद डिसाइड करेगा, मां बाप का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वो हम खास करके बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना, इंडियन लोगों के लिए मुश्किल है ये समझ पाना इंडिपेंडेंसी। बच्चे का इंडिपेंडेंसी मतलब बच्चा बिगड़ गया, अब इसीलिए हम उनको पकड़ के रखते हैं। 30-35 साल के लड़के लड़कियों का भी कंट्रोल माँ बाप करते हैं, उसकी बीवी क्या करेगी वो भी माँ बाप डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये अब यहां से फर्क होता है, हमारे कल्चरल फर्क इंडिपेंडेंसी में। वेस्टर्न कल्चर का जो फाउंडेशन है इंडिपेंडेंसी, बच्चे को ये कल्चरली माना जाता है कि बच्चा जितना जल्दी अपना डिसीजन खुद लेना शुरू करे, अपने पैर पर खड़ा होना शुरू करे, उतना ये सेलिब्रेशन की चीज होती है। स्कूल में, कॉलेज में बच्चे इवन अपने पैसे कमाने के लिए भी वो काम करने लग जाते हैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में। हमारे यहां अलाउ नहीं होता है, तेरा बाप क्या मर गया है कि तू काम करने जाएगा, तेरा बाप क्या इतना गरीब हो गया कि तू काम करने जाए, खैर वो अलग कल्चर है, उसकी अलग से डिस्कशन करेंगे। ये जो वर्क कल्चर के बारे में वो एक अलग पॉइंट है, और यहीं से इसकी अच्छाइयां भी है। इंडिपेंडेंसी आने से बच्चों में जो उनकी टैलेंट है, जो उनकी अपनी इंटर क्वालिटी इनर क्वालिटी है, वो खुलकर आने के लिए उनको मौका मिलता है, संघर्ष करने के लिए मौका मिलता है, जीवन को अच्छी तरह समझ पाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योरिटी उनके अंदर आती है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिसका कारण हम वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं। साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्ट की, स्पोर्ट्स की, बाकी चीजों में कितना डेवलपमेंट होता है, पर इसका अपना साइड इफेक्ट भी है। और इसका साइड इफेक्ट होता है सबसे पहले फैमिली टूटती है, बिकॉज यहां एक सबसे बढ़िया, एक सबसे बड़ी और सबसे फेमस डायलॉग का जो सेंटेंस होता है, आई नीड माई स्पेस, मुझे अपना स्पेस चाहिए, वो स्पेस भी उसके अपने पार्टनर के लिए भी मंजूर नहीं है। मां बाप तो छोड़िए, मतलब पति के भी अलग होना चाहिए, पत्नी के भी अलग सोच होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्पेस चाहिए, इसीलिए फैमिली टूटती है। फैमिली टूटना कहना तो गलत बात है, बेसिकली वेस्ट में फैमिली एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। अगर फैमिली की डेफिनेशन ढूंढे वो वेस्टर्न कल्चर में फैमिली में दिखता नहीं है। इंडियन कॉन्सेप्ट में फैमिली बड़ा मैटर करता है, वह इंडिविजुअल की वैल्यू कम है, फैमिली की ज्यादा है। हर घर का मेंबर, उसकी मेंबरशिप की वैल्यू तब है जब वो फैमिली के साथ जुड़कर चलता है। उसकी काम, उसका उसकी व्यवहार, उसकी गोल, उसकी पढ़ाई लिखाई सब फैमिली सेंटर्ड होता है। तो डॉक्टर इसीलिए नहीं बनेगा कि तू एक डॉक्टर है, इसीलिए कि फैमिली की प्राइड उसमें जुड़ा हुआ है। तो गलत काम इसीलिए नहीं करेगा कि गलत काम करना बुरी बात है, वो फैमिली की प्राइड उसके साथ जुड़ी हुई है। जब मैं पहली बार 10वीं पास करके पढ़ने के लिए बाहर गया, घर से बाहर, मेरे पिताजी ने जो मुझे सबसे पहली बात बताई थी, एक ही बात बताई थी कि बेटे ऐसा कुछ नहीं करना जो परिवार का नाक कटे। इसीलिए नहीं करना कि ये बुरी बात है, इसीलिए कि परिवार का नाक जुड़ा हुआ है, परिवार का इंपोर्टेंस है। इसीलिए वो जो जॉइंट फैमिली आज भी अल्दो पूरी इंडियन सोसाइटी ग्रेजुअली वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, आपको वो जॉइंट फैमिली, ये जो यूरोप के अमेरिका के लोग भारत जाते हैं, गांव तो छोड़िए शहरों में भी जब वो देखते हैं चार चार पीढ़ी से लोग एक ही घर में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। मैंने तो यहां ईस्टर्न में भी देखा, तीन तीन पीढ़ी से इंडियन फैमिली एक ही घर में रहते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं गुजराती हैं और हैं, तो यहां पर भी वो रह रहे हैं 25-30 साल से रह रहे हैं, पर अभी भी वो वेस्टर्नाइजेशन से काफी सारा वेस्टर्नाइज हो चुका है, पर अभी भी कुछ कुछ संस्कृति उन्होंने बचा के रखा है। तीन चार पीढ़ी से यहां भी रहते हैं, साथ रहते हैं, दादा परदादा, उनके तीन चार भाई एक ही घर में रहते हैं, उनके पत्नियां, उनके बच्चे सब एक ही घर में रहते हैं, यहां रहते हैं। तो इसी और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है ओल्ड एज लाइफ, क्योंकि फैमिली बिखरता है। तो जो ओल्ड एज है, जो बुजुर्ग लोग हैं, भारत में एक वेस्टर्न कंट्रीज में एक फायदा है कि लोग फाइनेंशियली यहां इंडिपेंडेंट होते हैं, बुजुर्ग लोगों के पास भी पैसे की कोई ज्यादा कमी नहीं होती है, उनकी सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके खुद की कमाई के, क्योंकि वहां वर्क कल्चर अच्छा है, लोग काम करने को रेस्पेक्टेबल मानते हैं। भारत में काम करने को बड़े बुरी नजर से देखा जाता है, बाहर काम नहीं कर सकते हो, तो लोगों के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब तक वो फिजिकली मेंटली काम करने लायक है तो अपने घर में अकेले रहते हैं, बच्चे अपने रहते हैं। जब वो काम करने लायक नहीं होते हैं, बच्चे डिसाइड करते हैं इनको कौन से ओल्ड एज भेजना है, जबकि इनके ओल्ड एज होम काफी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बड़े स्टैंडर्ड है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर तरह की फैसिलिटीज हैं, हर कोई केयर करने वाली चीजें हैं। पर प्रॉब्लम तब होती है, इंसान तो कोई रोबोट नहीं है ना, मशीन नहीं है ना कि वो खा ले, पी ले, खेल ले, कूद ले, स्विम कर ले, बस हो गया। उसके अंदर एक दिल भी है, इमोशन भी है, वो भी सोचता है कोई मुझे भी मिलने आए, कोई माँ, कोई बच्चे मेरे भी हो, कोई मेरे आसपास रहे, मेरे से बात करे, मेरे से सुख दुख बांटे, मेरी एक्सपीरियंस को सुने, नहीं हो पाता है। तो इंसान कोई मशीन तो है नहीं है कि आप उसको ऑयल डाल दो, उसकी सर्विस करा दो, वो परफेक्ट रहा। वो इमोशनल टच उनको नहीं मिलता है, बुजुर्ग लोगों को, जो इंडियन कल्चर में फैमिली ट्रेडिशन के कारण आप कहेंगे भारत में भी बुजुर्गों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जरूर जुल्म हो रहा है। एक चीज इस बीच में मैं आपको बोल दूं, भारत जैसे देशों में जो वेस्टर्नाइजेशन होता है उसका परिणाम क्या होता है पता है? जबकि हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं या यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि हम वेस्टर्न बनते जा रहे हैं, अमेरिकन बनते जा रहे हैं, ब्रिटिश बनते जा रहे हैं। एक्चुअली भारत जैसे देश जब वेस्टर्नाइज होता है वो वेस्ट नहीं बनता है, वो अफ्रीका बनता है। मैं हमेशा भारत में कहा करता था इट्स नॉट ए वेस्टर्नाइजेशन, इट्स अफ्रीकनाइजेशन। तुम कभी भी वेस्टर्न नहीं बन सकते हो उनके कपड़े पहन करके, उनकी खाना खा करके, उनकी भाषा बोल करके। तुम्हारे जो ज्योग्राफिकल चीजें हैं, जो तुम्हारे और चीजें हैं, वो तुम्हें कभी वेस्टर्न बनने नहीं देगा। तुम एक बड़ा बिगड़ा हुआ वेस्टर्न बनोगे जिसको आजकल अफ्रीका जो बना हुआ है, अफ्रीकन देश। तो भारत आपके वाले का अफ्रीका बनेगा जब वेस्टर्नाइज बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा सज्जन देवियों। तो अब वो उस कल्चर के कारण हमारे भी यहां बुजुर्गों पर अब जुल्म होने लगा है, इंडिविजुअलिस्टिक सोच आने लग गए हैं। पर ऐसा सब जगह नहीं मिलेगा, आपको 10% मिलेगा, 20% मिलेगा। बुजुर्ग मां बापों को पालना बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, खुशी से पालते हैं, एंजॉय करते हैं। अपवाद है, यहां भी है, मां बाप को यहां बुला देते हैं इसीलिए नहीं बुला लेते कि उनके पास सेवा करनी है, इसीलिए कि उनको फ्री में, क्योंकि अमेरिका में नौकर रखना बड़ा महंगा पड़ता है तो फ्री में उनको नौकर मिल जाता है, मां बाप से काम कराना, खाना बनवाना, बच्चों को पलवाना, स्कूल छोड़ना ले आना, वो अपना एंजॉय करे और अपने इंडिया में ये मैसेज दे देना कि मां बाप की हम केयर करते हैं। अभी अमेरिका में रहकर भी वो उस जुल्म को करते हैं। वो क्या है? वेस्टर्न कंसेप्ट का अफ्रीकनाइजेशन है। अफ्रीकनाइजेशन जब मैं कहता हूं, किसी कल्चर का जब आप उसको डिस्टॉर्ट कर देते हो विदाउट यूजिंग योर इंटेलेक्ट, तो यही दशा होता है। आप देखिए अफ्रीका में वेस्टर्नाइजेशन होने के बाद उनकी क्या दशाएं हुई। तो उनको भी, बुजुर्ग मां बाप को भी प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, ये ओल्ड एज होम में उनको नहीं मिलता। जो बच्चे मां बाप पाला पोषा बड़ा किया, बच्चों को एंजॉय किया, वो भी चाहते हैं जब बुढ़े बुजुर्ग हो जाएं उनके बच्चे उनके नाती नातीन उनके साथ शेयर करें। अगले एक कल्चरल डिफरेंस जो बहुत दिखता है दोनों कल्चर में, ये फर्क दिखता है वो है इक्वालिटी, जिस पर वेस्टर्न कल्चर में समानता, सब बराबर हैं, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, काला हो गोरा हो, जो इक्वलिटी है, सबको समान दृष्टि से देखना, बड़ा अफसर हो छोटा अफसर हो, ये उसकी खास बात है। एवरीवन इज क्रिएटेड इक्वल, ये तो हम बोलते हैं, पर हमारी प्रैक्टिस में भारत की, और ऐसा नहीं कि आज, हजार हजार सालों से प्रैक्टिस में हमने ये नहीं सीखा। हम बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरी फैमिली है, पर हम अपने घर में भी अपनी बीवी को छोटा समझते हैं, अपनी बच्ची को छोटा समझते हैं, अपनी मां को छोटी समझते हैं बाप के कंपैरिजन, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि भारत में काम करने वाले को बुरी नजर से देखा जाता है, बुरा काम करने वाले को उतने बुरे नजर से नहीं देखा जाता है जितना काम करने वाले को। इसीलिए हर कोई जो फिजिकल काम करता है उसको भी हम बहुत छोटा समझते हैं, तरीके से बात नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं देते। ये वेस्ट कल्चर में काफी अच्छी है, ये हमें सीखने लायक है। हमारे यहां ऐसा कोई सृष्टि का ऐसा कोई चीज नहीं जिसके बेस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, जाति के नाम पर, मैं ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, उसमें भी मैं बड़े शूद्र हूं तो छोटा शूद्र है, मैं बड़ा राजपूत हूं तो छोटा राजपूत है, मैं बड़े को जात के बनिया हो तो छोटे जात के बनिया, में बड़े ब्राह्मण हो तो छोटा ब्राह्मण है। फिर जेंडर की प्रॉब्लम है, तो औरत है तुझे दूध पीने का हक नहीं है तो दूध निकालने का हक है, सबके बाद खाना खाने का तुझे हक है, मैं पुरुष हूं मैं पहले खाऊंगा, बड़े जो फैमिली में जहां इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं तो जो तो उसमें जो सबसे बड़ा चेयर होगा वो पुरुष का होगा। ये जो इक्वलिटी की कंसेप्ट इवन यहां आने पर भी बहुत सारे इंडियन फैमिली में ये कंसेप्ट आया ही नहीं, ना अपनी विधि को बराबर समझना, ना अपने से सो कॉल्ड जाति के नाम पर दूसरे को बराबर समझना। ये भारतीय लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है, भारतीय संस्कृति में इसको सुधारने की जरूरत है। हम बोलते हैं सब ईश्वर के संतान है, सारा संसार हमारा परिवार है, और प्रैक्टिकलिटी में हमेशा से हम ये जो छोटा बड़ा सोच लेकर के चलते रहते हैं, और उसका परिणाम है, खास करके आप यूएसए में देखेंगे, ऑफिस में आप काम करते हैं, ये जो सर बोलना मैडम बोलना यहां ये कल्चर नहीं है, ये अभी धीरे धीरे यहां शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ हम लोगों के ज्यादा माइग्रेशन होने से, एशियन लोगों के आने से, ये सब इस तरह के सर मैडम योर हाईनेस हिज हाईनेस कल्चर शुरू हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेशन के शब्द हैं, ये हमें इनसे सीखने की जरूरत है। बड़े से बड़े आदमी को भी रिस्पेक्ट ले पाने का हक है, तो छोटे से छोटे आदमी को भी हक है। जो आपके घर में क्लीनिंग करता है उसको भी रिस्पेक्ट की इच्छा है, वो भी रिस्पेक्ट का अधिकारी है, वो कोई चोर चक्का बदमाश नहीं है, वो अपनी मेहनत से कमाता है, आपके मेहनत से नहीं कमाता। ये हमें उनसे सीखने की है। रेस्पेक्ट यहां किसी मिलियनरी को बिलियनरी को कोई ऑफिसर को कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है। रेस्पेक्ट नहीं होता है मतलब नहीं कि कोई उसको गालियां देता है, उसको कोई एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट नहीं मिलता जैसे भारत में मिलता है। बहुत सारे राज्यों में जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनका एक ही सपना, पहला सपना क्या है, आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, क्यों, उसमें रुतबा आता है, सरकार के तरफ से 7-8 नौकर चाकर मिलते हैं, फिर वो तू बोल के बात करेगा ना, ओए तू पानी ला तू ये कर, हो सकता है एमबीए करके वो बात पैसा कमा ले, पर वो रुतबा नहीं आता है ना पैसे से। बहुत सारे लोगों को इसमें मजा आता है, पावर की मजा आता है भारत जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में अफ्रीका में भी मिलेगा आपको, आपको अरब देश में भी मिलेगा। ये संस्कृति हमें सीखने की जरूरत है कि सबको सम्मान का हक है, सब बराबर हैं, कौन कैसा काम करता है, कौन कितना कमाता है, कौन कैसा दिखता है, इससे किसी को सम्मान में कम नहीं होना चाहिए। अगर सर बोलने की तुम्हें आदत है तो वो सेल्समैन को भी सर बोलो, तुम्हारे बॉस को भी सर बोलो, तो फिर वो इक्वालिटी आती है। हमारे देश में इसकी बड़ी जरूरत है, इस चीज को बदलने की। अगला आता है रिलीजियन और बिलीव्स। यद्यपि ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हमें बड़े हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सुंदर दर्शन शास्त्र दर्शन दिया विचार दिए, पर ओवरऑल जो रिलीजन के मामले में आज का इंडियन हो वेस्टर्न हो यूरोपियन हो अरबियन हो मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखता। फेथ बिलीव वो सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा कर देता है, सिर्फ फर्क है तुम्हारा नाम अलग है उसका नाम अलग है, तुम्हारे थोड़ी बहुत पूजा करने की तरीका है उनके पूजा करने की तरीका है, मेंटली सब एक टाइप के हैं रिलीजियस। उटपटांग चीजों को सच मानना, समझाने वाले व्यक्ति को बुरा समझना, फेथ के नाम पर दुनिया को बाकी ना मानने वाले लोगों को छोटा समझना, अपने फेथ को सबसे बड़ा समझना, और फेथ वो रिलीजन के नाम पर विश्वास या फेथ के पीछे पड़े रहना, उटपटांग मीथ को सच मानने की जिद्दी करना, इसमें ना इंडियन कोई पीछे है, ना अमेरिकन पीछे है, ना अरबियन पीछे है। रिलीजन अपने आप में तो सबको बराबर बना देता है उटपटांग चीजों के नाम पर जो फर्क है, जो थोड़ी बहुत फर्क है ईस्टर्न और वेस्टर्न सोच में, ये रिलीजन के कारण नहीं, वेस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के कारण, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वेस्ट में कल्चर में दिखता है, जिसको कल्टीवेट किया गया, और हमारे यहां जो हजार साल से कल्टीवेट किया गया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका रिजल्ट हमें रिलीजन में दिखता है। वो क्या है कि जो वेस्ट लोग जिस रिलीजन को मानते हैं, उस रिलीजन में ये जरूर प्रचार किया जाता है, उन लोगों को मानना होता है कि जो इस रिलीजन को नहीं मानते वो सब नरक जाएंगे, उनको सुधारने की जरूरत है, हम लोग उनको सुधारेंगे, अच्छे रास्ते पर लाएंगे, वो सब मूर्ख हैं, अंधे हैं, सब कुछ हैं, हम जिसको मानते हैं उसी के द्वारा वो उनका कल्याण होगा। पर ईस्टर्न कल्चरल डिफरेंसेस के कारण रिलीजन में ये इंपैक्ट है कि ये इंडियन लोगों की सोच है कि आप कुछ भी मानो सब एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा भी मानते हो जैसा भी करते हो ठीक है। उसका रिजल्ट है कि भारत को छोड़कर बाकी देशों में अगर हिस्ट्री पढ़ें, ज्यादा नहीं सिर्फ 2000 साल की हिस्ट्री, रिलीजन के नाम पर इतने मार काट हुए, रिलीजन के नाम पर मैं राइट की बात नहीं कर रहा हूं, जो रेट्स होते हैं, जो दंगा होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, नहीं, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, जबरदस्ती अपने रिलीजन में लाने के लिए करोड़ लाखों लाखों लोगों को मारा गया, यूरोप से लेकर अरब से लेकर दुनिया भर में। पर इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड के कारण ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। दंगे तो आजकल होने लगते हैं जब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पॉलिटिकल, उसके कारण। वो जो सोच है कि सब ठीक है, कोई किसी भी रिलीजन को मानता है, ये जो हिंदुइज्म में है वो इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड है। और जो नहीं, मेरा धर्म ही एकमात्र धर्म है जो सही है, बाकी सब गलत है, ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। पर एक्चुअली रिलीजन, जो भी जितने भी रिलीजन चलते हैं, वो सिवाय उटपटांग मीथ को रियलिटी मानने के, आपके इंटेलेक्ट को बंद करने के अलावा और कुछ नहीं काम करते। थोड़ी कुछ टिडबिट्स, दो चार चीजें और बताते हमारे टाइम के बारे में। इंडियन के हमारे कल्चर में टाइम का कोई इंपोर्टेंस नहीं था, ना कभी है। 10 बजे बुलाया, ठीक है 12 बजे पहुंच जाएंगे, 12 बजे घर से निकल के टेक्स्ट कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। ऑफिस तो देखिए भारत में 9 बजे की ऑफिस होती है, तो आजकल मिनिस्टर लोग को वो रेड करते हैं, छापा करते हैं, तो जिस दिन रेड करते तो उस दिन तो 10% दिखते हैं, अगले 2-3 दिन तक 70% हो जाते हैं, स्टिल 70%, इतने डर के बावजूद एक हफ्ते के बाद फिर 10% हो जाते हैं। 9 बजे अगर ऑफिस खुलता है और आप किसी भी ऑफिस में चले जाए भारत में, 10-20% से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। जो लोग आदमी जहां से पैसा कमाता है अगर वहां टाइम पर नहीं जाते तो आपकी शादी ब्याह में वाला क्यों टाइम पर आएगा। ये हमने ये कंसेप्ट कभी एडप्ट किया ही नहीं है, पूरी इंडिया वेस्टर्नाइज हो रहा है, पर जो अच्छी चीजें वेस्ट से सीखना है वो हमने कभी नहीं सीखा। दो चीजें खास करके, तीन चीजें, इक्वालिटी, पंक्चुअलिटी और वर्क कल्चर, ये तीन चीजें अगर हम वेस्टर्न कल्चर से सीख जाएं, तो आप कुछ भी करो आप इनसे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम तो यही देखते हैं, अमेरिका में 30-30 साल से 40 साल से रहे ने, इंडियन कम्युनिटी प्रोग्राम में देखो यहां के लोग बकवास लगता है इनको, टाइम पर आना लगता है, इंसल्ट है। वहां ऐसा होता है कि जो बड़ा आदमी होता है ना वीआईपी, वीआईपी कल्चर भी इंडियन संस्कृति में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आजकल तो वो लोग चेयर के आगे लिखा होगा वीवीआईपी, जैसे बाबा लोग पहले लिखते थे 108 श्री, अब लिखते 1008 श्री, 1008 श्री, फिर कुछ लोगों को लगा नहीं ये तो मेरे से आगे बढ़ गया, अब वो लिखने लगे अनंत श्री, अब क्या करोगे कर इन्फिनिट श्री। मैं देखता हमारे बच्चों में ये दोनों बच्चे लड़ते रहते हैं, तो वो कहता है मेरे पास वो स्कूल में 10 ये है, वो कहेगा मेरे पास 100 है, वो कहेगा मेरे पास 1000 है, फिर वो एक बच्चा कहेगा अच्छा मेरे पास इन्फिनिट है। तो बाबाओं में भी यही लड़ाई चलती बच्चों की तरह, पहले 108 श्री, 1008 श्री, अब बहुत सारे बाबा लिखने लग गए अनंत श्री, अब क्या करोगे करो कहां बढ़ोगे जाओ। तो हमारे जो एलिट लोगों में भी वो बीमारी है, वो श्री के जगह वीआईपी लगाते हैं, उनके कार में उनकी सीट में वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये भी बड़ी बुरी इंडियन कल्चर है, वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, फिर पता नहीं आगे फिर वीवीवीआईपी आएगा, हो सकता है 50 साल के बाद आ जाए कि कुछ लोग होंगे जो अनंत वीवीआईपी होंगे, इन्फिनिट वीवीआईपी होंगे। इस कल्चर से मुक्ति की बड़ी जरूरत है। अब अगर आप वीआईपी हैं, अगर एक बीवी लगाए दो चार लगा तो भगवान शुक्र करे, तो टाइम को आप पालन कर दें ये तो हो ही नहीं सकता जी। आपको बुलाया गया 10 बजे तो उनका सेक्रेटरी उनको बोलेगा सर 10 बजे है तो आप 11:30 से पहले निकलिए मत, है ना भाई, जल्दी टाइम पर आ गए और बीवी आप वीआईपी हो गए, वो ही नहीं, छोटे लोग टाइम पर आते हैं। और इसी से जुड़ा है दूसरा कल्चर है वर्क कल्चर, काम करने वाला छोटा आदमी होता है। कल तक मैं 100 रुपए कमाता था अपना सामान खुद उठा के जाता था, 1000 रुपए कमाता था खुद उठा के जाता था, 5000 कमाने लगा तो एक सूटकेस भी उठाने के लिए कुली रखता हूं, इसलिए नहीं रखता हूं कि मैं सूटकेस उठा नहीं सकता हूं, इसीलिए कि लोग क्या सोचेंगे अपना सूटकेस खुद उठा के जाता है, ये नाक कटने की बात है। एक छोटा एग्जाम्पल करके बात खत्म करते हैं। एक बार कलकत्ता में एक हमारे मित्र बात कर रहे थे, वो घूमने के लिए गए थे, फैक्ट्री में गए, उनके एक दोस्त एक फैक्ट्री में काम करते थे तो उनको ले गए फैक्ट्री दिखाने के लिए, इंजीनियर थे। हमारे यहां इंडियन लोग काफी सारे इंजीनियर डॉक्टर अमेरिका में भी है, पर फर्क समझने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी तो उनको घुमाने ले गए, तो एक जगह उनका एक बहुत बड़ा मशीन एक खराब पड़ा था, तो काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे इसको ठीक करने की, ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिश इंजीनियर्स को जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया था उसको ठीक करने के लिए। तो वो बेचारे जो ब्रिटिश इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं अपना आगे पीछे पड़े हुए लेटे करके काम कर रहे हैं, और अपने आप को पता है हमारे इंडिया में इंजीनियर हो गया, आईएएस हो गया, डॉक्टर हो गया, को ताइवान के कड़े देख रहे हैं। तो वो ब्रिटिश जो इंजीनियर हेल्प जो ठीक कर रहे थे उनको हेल्प चाहिए था मशीन को पलटने के लिए, तो उन्होंने कहा Anyone who can help? तो आप कौन देखे देख रहे हैं, छोटा नौकर कौन है छोटा है? वो कह रहा है उसको बुलाओ भाई, ओए इधर हाथ लगा, इधर हाथ लगा, खुद टाइप कोट पहन के खड़े हुए हैं। छोटे लोगों को बुलाया गया, पीएम चपरासी छोटे क्लर्क टाइप के लोग जो हाथ लगाए उसको उठाए, उस आदमी ने एडिटोरियल में लिखा न्यूज़पेपर में लिखा कि जो इंजीनियर खड़े हुए थे इंडियन इंजीनियर और जो काम कर रहे थे वो ब्रिटिश इंजीनियर वो उनसे ज्यादा क्वालिफाइड थे, उनकी तनख्वाह उससे ज्यादा था, उनका पोस्ट उनसे ज्यादा था, पर वो सारे शरीर को काला कर रहे थे, मशीन में गिर के खड़े होकर काम कर रहे थे। उनसे कम तनख्वाह लेने वाला, कम पोस्ट पर रहने वाला, कम क्वालिफाइड इंडियन इंजीनियर टाई और सूट पहन के खड़े होकर के ऑर्डर दे रहे थे अपने सबोर्डिनेट्स को, हेल्प करने के लिए। दिस इज आवर कल्चर, वर कल्चर। इसीलिए हम गरीब हैं, इसीलिए हम मेंटली भी छोटे हैं। ये जरूरत है सुधारने के लिए। हर आदमी को जो फिजिकली काम करने वाले को जो छोटा समझना, यही बुरी बात है। और यहां भी हम देखते हैं, यहां आप करके बहुत सारे पेरेंट्स ने सिखा कि बच्चे कितने बड़े धनी घर का बच्चा हो, जब वो कॉलेज जाता है, हाई स्कूल में जाता है, वो अपने कमाने के लिए खुद जाता है, छोटे मोटे काम करता है, स्टोर्स में काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है। भारत में बताओ कि मेरा बच्चा आजकल रेस्टोरेंट में काम करने जाता है, उसके बाद कॉलेज जाता है। वो तू क्या कर रहा है, तेरे बच्चे को तू ये करे, क्योंकि इतना कंगाल हो गया। मतलब काम करने का मतलब कंगाली की निशानी। ये कल्चर बदलने की जरूरत है सज्जनों देवियों। टाइम हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ओवरऑल एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज है ये वेल्थी ओबेसिटी एंड वर्सेस पुअर ओबेसिटी। ये वैसे किसी आपका काम का नहीं, पर आपका एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है। भारत में मोटे लोग उतने होते जाते हैं, कहते हैं भाई खाता पीता आदमी है, मतलब पैसा वाला आदमी हो तो मोटा पीता होता है। वेस्टर्न में जाए उल्टा, और अमेरिका में आपको उल्टा दिखेगा, जितना गरीब आदमी होगा उतना मोटा दिखेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। यहां पुअर ओबेसिटी ज्यादा है, हमारे यहां वेल्थी ओबेसिटी ज्यादा है। मैं भारत में था, मेरा एक ये ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट गया था संस्कृत पढ़ने के लिए, कुछ 6 महीने के कोर्स के लिए मेरे पास गया था। तो उसके साथ कभी कभी हम वो डोसा खाने चले जाते थे उसको लेकर। तो उसने मुझे एक बड़े मजेदार बात बताई, बोले इंडिया में जो छोटे जो जो स्ट्रीट वो ढेला जो ठेला लगा करके बेचते हैं, या छोटे छोटे रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे, जो ढाबा टाइप के होते हैं, ये खाना ज्यादा हेल्दियर है यहां के इंडिया के 5-स्टार होटल वगैरह से, क्योंकि वहां तेल मसाले और बाकी चीजें ज्यादा, यहां कम होता है। सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि थोड़ा हाइजेनिक नहीं होता है साफ सफाई, नहीं तो ये ज्यादा हेल्दियर होता है। और अमेरिका से बिल्कुल उल्टा होता है, वहां जितना महंगा रेस्टोरेंट में जाओगे उतना आपको हेल्दी खाना मिलेगा, जितनी सस्ते रेस्टोरेंट में जाओगे वहां अनहेल्दी खाना मिलेगा। भारत में उल्टा होता है, जितने महंगे रेस्टोरेंट में जाओगे उतना अनहेल्दी खाना मिलेगा, जितने सस्ते रेस्टोरेंट में जाओगे उतना हेल्दी मिलेगा। हाइजीनिक का जरूर प्रॉब्लम है। ये है पुअर ओबेसिटी और वेल्थी ओबेसिटी। तो थोड़ी सी मैंने आपके सामने बात रखने की कोशिश की, कुछ चीजें हम उनसे भी सीखें, कुछ चीजें वो हमसे भी सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो अच्छा आदमी वही है जो दोनों में बैलेंस रखता है। दुनिया में जो भी अच्छी चीजें मिलता है सबको लेता है, ऋग्वेद के मंत्र की तरह, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतु, जहां जहां जो भद्र चीजें हैं वो सब मेरे तरफ आ जाए, अब मेरे अंदर जो अभद्र हैं, बुराइयां हैं, वो सब बाहर चला जाए। विश्वामिदेव मंत्र में भी आप यही पाठ करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम सब दोनों कल्चर में से अगर अपने लाइफ में एक हार्मोनी बना पाए अच्छी चीजों को लेकर, तो हमारा जीवन स्तर ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।